एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी श्रोताओं का स्वागत। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो सफलता के बारे में हमारी जो आम सोच है ना, उसे काफी हद तक हिला सकती है।
नमस्ते। हाँ, ये किताब है मैल्कम ग्लैडवेल की आउटलायर्स द स्टोरी ऑफ सक्सेस,
और ये उन सभी के लिए है जो सोचते हैं कि कामयाबी बस मतलब सिर्फ मेहनत और हुनर का नतीजा है।
बिल्कुल, ग्लैडवेल यही सवाल उठाते हैं, क्या सच में ऐसा ही है या फिर कुछ और भी है जो किसी इंसान को भीड़ से एकदम अलग यानी एक आउटलायर बना देता है।
और ये सवाल आज के जमाने में कितना जरूरी है ना?
हाँ, बहुत ज्यादा।
हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है, पर क्या हम पूरी कहानी जानते हैं? ये किताब हमें एक नया नजरिया देती है।
सही कहा, ये हमें सिर्फ व्यक्ति की योग्यता से आगे देखने को कहती है, उन छिपे हुए फायदों, मौकों और यहाँ तक कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों की तरफ देखने को कहती है,
जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते।
बिल्कुल। तो चलिए पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, मैल्कम ग्लैडवेल।
हाँ, मैल्कम ग्लैडवेल जाने माने कनाडाई पत्रकार हैं, लेखक हैं, काफी वक्त से द न्यूयॉर्कर मैगजीन के लिए लिख रहे हैं।
और उनकी खासियत कमाल की है, वो जो मुश्किल एकेडमिक रिसर्च होती है ना, जैसे समाजशास्त्र या मनोविज्ञान की बातें,
हाँ हाँ,
बोरिंग हो सकती हैं, जो
उनको वो लेते हैं और एकदम दिलचस्प कहानियों में पिरो देते हैं। जैसे उनकी पिछली किताबें थीं द टिपिंग पॉइंट या ब्लिंक, काफी पढ़ी गईं।
उनका अंदाज ही अलग है, वो सिर्फ आपको डेटा या आंकड़े नहीं बताते।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उनमें पैटर्न ढूंढते हैं, वो छुपी हुई बातें सामने लाते हैं जो हमारी आम समझ को मतलब चैलेंज करती हैं। और उनकी पृष्ठभूमि भी इसमें मदद करती होगी शायद, उनकी माँ जमैकन, पिता ब्रिटिश।
हाँ, हो सकता है, ये जो मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड है ये उन्हें चीजों को एक अलग ज्यादा बड़े कैनवस पर देखने में मदद करता है, वो पश्चिमी सफलता की कहानियों से थोड़ा हटकर सोच पाते हैं।
सही कहा, वो एकदम सही इंसान लगते हैं सफलता के इस मिथक को तोड़ने के लिए, वो एकेडमिक दुनिया और आम पाठक के बीच एक पुल जैसे हैं।
बातें गहरी करते हैं पर अंदाज एकदम सहज।
हाँ, तो अब आते हैं किताब पर, आउटलायर्स।
राइट, आउटलायर्स हमें एक सफर पर ले जाती है जिससे ग्लैडवेल कहते हैं सफलता की पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी ऑफ सक्सेस।
इकोलॉजी ऑफ सक्सेस मतलब
ये कि सफलता सिर्फ एक बीज यानी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पूरी मिट्टी, पानी, हवा यानी माहौल पर निर्भर करती है।
किताब का मुख्य मकसद हमारी इस सोच को बदलना है कि बड़ी कामयाबी कैसे मिलती है,
और ये सीधी चुनौती देती है उस सेल्फ मेड इंसान वाले आइडिया को, है ना, कि कोई बस अपनी मेहनत से सब कुछ बन गया। बिल्कुल, ग्लैडवेल कहते हैं ना कि महान सफलता सिर्फ आपकी निजी काबिलियत या आईक्यू या मेहनत का नतीजा नहीं है, ये असल में फायदों और मौकों के एक बड़े जटिल जाल का परिणाम है।
जिसमें क्या क्या शामिल है?
बहुत कुछ, आपकी परवरिश, आपकी संस्कृति, आपका समुदाय, आप किस जमाने में पैदा हुए, यहाँ तक कि आपकी किस्मत भी। ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उसके पूरे माहौल की कहानी है।
तो किताब को उन्होंने बांटा कैसे है?
मोटे तौर पर दो हिस्से हैं। पहला है अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, ये दिखाता है कि बाहरी चीजें जैसे आपका जन्मदिन कल है या इतिहास का कोई खास दौर चल रहा है, ये कैसे कुछ लोगों को अनजाने में फायदा पहुंचा देती हैं।
अच्छा, जन्मदिन भी?
हाँ हाँ, वो भी। और दूसरा हिस्सा है विरासत यानी लेगेसी, ये बताता है कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें, हमारे परिवार की पृष्ठभूमि, ये सब हमारी सोच और हमारी क्षमताओं को कैसे बनाते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं।
तो ये किताब सिर्फ कामयाब लोगों की तारीफ नहीं करती?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उन छुपे हुए कारणों को सामने लाती है जिन्होंने उन्हें आउटलायर बनाया। इसमें आपको हॉकी खिलाड़ियों की कहानियां मिलेंगी, रॉक स्टार्स की मिलेंगी, सॉफ्टवेयर बनाने वाले दिग्गजों की, बड़े वकीलों की, और हर कहानी एक नया राज खोलेगी।
सुनने में तो बहुत दिलचस्प लग रहा है, तो चलें कुछ खास हिस्सों पर बात करें।
हाँ बिल्कुल, शुरू करते हैं रोजेटो मिस्ट्री से। ये कहानी है पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से कस्बे की, रोजेटो। वहां ज्यादातर इटली से आए अप्रवासी रहते थे।
अच्छा, तो मिस्ट्री क्या थी?
मिस्ट्री ये थी कि 1950s के दशक में डॉक्टरों ने देखा कि रोजेटो के लोगों में, खासकर 65 साल से कम उम्र के मर्दों में, दिल की बीमारियों से मौतें आसपास के इलाकों से बहुत ही कम थी, ना के बराबर।
अरे, ये तो अजीब बात है, क्यों? उनका खान पान कुछ खास था या वो बहुत कसरत करते थे?
यही तो बात है, ऐसा कुछ नहीं था, वो भी वही खाते पीते थे जो बाकी अमेरिकी खाते थे, स्मोकिंग भी करते थे, कसरत भी ज्यादा नहीं। तो फिर राज क्या था?
क्या था?
राज था उनका समाज, उनका समुदाय। रोजेटो में लोग एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए थे, बड़े परिवार थे, कई पीढ़ियां साथ रहती थीं, पड़ोसियों में बहुत मेलजोल था, चर्च क्लब्स सब मिलकर एक बहुत मजबूत सामाजिक ताना बाना बनाते थे।
तो ये जो आपसी जुड़ाव था, ये उनकी सेहत का राज था?
हाँ, यही उनका सुरक्षा कवच था। ये कहानी एक तरह से पूरी किताब के लिए एक मेटाफर जैसी है, एक रूपक कि किसी इंसान को समझना है तो सिर्फ उसे नहीं, उसके आसपास के माहौल, उसके जंगल को समझना होगा।
ये तो बहुत बड़ी बात है। हम अक्सर सेहत हो या कामयाबी, उसे सिर्फ व्यक्ति की आदतों से जोड़ देते हैं।
बिल्कुल, जबकि उसका समुदाय, उसका समाज कितना जरूरी है, ये हम भूल जाते हैं।
और इसी माहौल और अवसर की बात को आगे बढ़ाता है अगला कॉन्सेप्ट, मैथ्यू इफेक्ट।
हाँ, मैथ्यू इफेक्ट। ये नाम बाइबल के एक कहावत से लिया है, जिसके पास है उसे और दिया जाएगा।
अच्छा, और इसे समझाने के लिए ग्लैडवेल ने किसका उदाहरण लिया है?
कनाडा के आइस हॉकी खिलाड़ियों का। उन्होंने देखा कि कनाडा की जो टॉप जूनियर लीग्स हैं, उनमें ज्यादातर बड़े खिलाड़ी साल के शुरुआती महीनों में पैदा हुए हैं, जनवरी फरवरी या मार्च।
है? सिर्फ शुरुआती महीनों में? ऐसा क्यों?
इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है और थोड़ी कह सकते हैं सिस्टम की खामी जैसी। कनाडा में जूनियर हॉकी लीग में सिलेक्शन के लिए उम्र की कट ऑफ डेट 1 जनवरी होती है।
ओके।
तो सोचिए, जो बच्चा 1 जनवरी को पैदा हुआ है, वो उसी लीग में उस बच्चे से लगभग 1 साल बड़ा होगा जो 31 दिसंबर को पैदा हुआ है।
हाँ, बात तो सही है।
और बचपन में, खासकर स्पोर्ट्स में, ये 1 साल का फर्क शारीरिक ताकत, साइज, कोऑर्डिनेशन में बहुत मायने रखता है।
मतलब जो बच्चे जनवरी फरवरी में पैदा हुए, वो थोड़े बड़े और मजबूत होते हैं अपने एज ग्रुप में।
Exactly. तो वो थोड़ा बेहतर खेलते हैं, कोच की नजर उन पे पड़ती है, उन्हें बेहतर टीमों में चुना जाता है, उन्हें बेहतर कोचिंग मिलती है, ज्यादा प्रैक्टिस का मौका मिलता है,
और ये छोटा सा फायदा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है।
हाँ, यही है संचयी लाभ या क्यूमुलेटिव एडवांटेज। एक छोटा सा शुरुआती फायदा वक्त के साथ जुड़ते जुड़ते बहुत बड़ा बन जाता है। सोचिए, सिर्फ आपका जन्मदिन किस महीने में है, यह आपकी सफलता की राह आसान या मुश्किल बना सकता है।
ये तो कमाल की बात है। मतलब ये सिर्फ खेल में ही नहीं, पढ़ाई या करियर में भी हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है, शुरुआती मौके बहुत मायने रखते हैं।
और इसी से जुड़ा है वो आइडिया जो शायद इस किताब का सबसे मशहूर हिस्सा है, 10,000 घंटे का नियम।
हाँ, द 10,000 आवर रूल। ग्लैडवेल ने मनोवैज्ञानिक एंडर्स एरिक्सन के काम का हवाला दिया है। उनका कहना है कि किसी भी मुश्किल चीज में वर्ल्ड क्लास लेवल की महारत हासिल करने के लिए लगभग 10,000 घंटे की डेडिकेटेड प्रैक्टिस चाहिए होती है।
उन्होंने बीटल्स का उदाहरण दिया था शायद।
हाँ, बीटल्स का, कि वो मशहूर होने से पहले जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के क्लबों में रात रात भर 8-8 घंटे हफ्तों तक लगातार बजाते रहे थे। उन्होंने अपने वो 10,000 घंटे वहां पूरे किए।
और बिल गेट्स का भी?
हाँ, बिल गेट्स का भी, जिन्हें टीनेज में ही 1960s के दशक में कंप्यूटर पर घंटों प्रोग्रामिंग करने का मौका मिला। उस जमाने में ये मौका मिलना बहुत ही दुर्लभ, बहुत बड़ी बात थी।
लेकिन क्या ये सिर्फ घंटों की गिनती है कि बस 10,000 घंटे पूरे कर लो और आप जीनियस बन गए?
नहीं, यहीं पर ग्लैडवेल एक जरूरी बात कहते हैं। वो जोर देते हैं कि ये सिर्फ घंटों की बात नहीं है, असली चीज है उन घंटों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलना।
अच्छा,
बीटल्स को हैम्बर्ग का वो स्टेज मिला, बिल गेट्स को वो कंप्यूटर एक्सेस मिला। ये मौके ही अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा थे जो हर किसी को नसीब नहीं होते।
तो मेहनत जरूरी है, पर मेहनत करने का अवसर मिलना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल, जैसा ग्लैडवेल ने कहा है, अभ्यास वो चीज नहीं है जो आप अच्छा बनने के बाद करते हैं, ये वो चीज है जो आपको अच्छा बनाती है। लेकिन उस अभ्यास के लिए सही समय पर सही अवसर मिलना क्रिटिकल है।
इसका मतलब प्रतिभा होना एक बात है और उसे निखारने का सही मौका और माहौल मिलना बिल्कुल दूसरी बात।
सही, और ये हमें अगले पॉइंट पर लाता है। क्या सिर्फ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना, मतलब जीनियस होना ही सफलता की गारंटी है?
ग्लैडवेल इस पर भी सवाल उठाते हैं।
हाँ, वो जीनियस के इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। वो कहानी बताते हैं क्रिस्टोफर लैंगन की।
क्रिस्टोफर लैंगन कौन थे ये?
लैंगन का IQ आइंस्टाइन से भी ज्यादा बताया जाता था, मतलब सुपर जीनियस। लेकिन उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी गुमनामी में बिताई, कोई बड़ी अकादमिक या प्रोफेशनल सफलता हासिल नहीं की।
अरे, इतना हाई IQ फिर भी क्यों?
वहीं दूसरी तरफ वो उदाहरण देते हैं रॉबर्ट ओपनहाइमर का, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लीडर, जिन्होंने परमाणु बम बनवाया। वो भी जाहिर है बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनमें लैंगन के मुकाबले एक और चीज ज्यादा थी, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस।
प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ये क्या होती है?
व्यवहारिक बुद्धि।
हाँ, व्यवहारिक बुद्धि
मतलब ये जानना कि दुनिया असल में चलती कैसे है, लोगों से अपनी बात कैसे मनवानी है, किसी सिस्टम में अपना रास्ता कैसे बनाना है, माहौल को कैसे समझना है। ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये स्ट्रीट स्मार्टनेस है, सोशल स्किल्स हैं।
तो ग्लैडविल का कहना है कि एक हद के बाद आईक्यू उतना मायने नहीं रखता।
हाँ, उनका तर्क है कि एक निश्चित लेवल के बाद, शायद आईक्यू 120 के आसपास, और ज्यादा आईक्यू होने से सफलता की गारंटी नहीं बढ़ती। तब ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ये सामाजिक कौशल ज्यादा जरूरी हो जाते हैं।
और ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहाँ से आती है?
अक्सर ये परवरिश से मिलती है। ग्लैडविल समाजशास्त्री एनेट लारो के काम का जिक्र करते हैं। लारो ने दो तरह की परवरिश की बात की, एक कॉन्सर्टेड कल्टिवेशन। हाँ, ये ज्यादातर अमीर और पढ़े लिखे माँ बाप करते हैं। वो अपने बच्चों को हर तरह की एक्टिविटी में डालते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, उन्हें अपनी राय रखने के लिए बढ़ावा देते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि टीचर या डॉक्टर जैसे अथॉरिटी फिगर से कैसे बात करनी है, कैसे मोल भाव करना है।
अच्छा, और दूसरी तरह की परवरिश?
दूसरी है एकम्प्लिशमेंट ऑफ नेचुरल ग्रोथ, जो ज्यादातर वर्किंग क्लास या गरीब परिवारों में दिखती है। वहां बच्चों को ज्यादा आजादी मिलती है खेलने कूदने की, लेकिन बड़ों के सामने वो ज्यादातर चुप रहना और उनकी बात मानना सीखते हैं।
तो लैंगन को शायद वो कॉन्सर्टेड कल्टिवेशन वाली ट्रेनिंग नहीं मिली।
शायद नहीं, उन्हें मुश्किल हालात में सिस्टम से लड़ना नहीं आया, जबकि ओपेनहाइमर अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से लोगों को और सिस्टम को मैनेज कर पाए। ये दिखाता है कि आपकी परवरिश आपको कितना बड़ा अनदेखा फायदा या नुकसान दे सकती है।
हमारी परवरिश और हमारी संस्कृति का असर कितना गहरा होता है, बाप रे।
हाँ, और इसका एक और बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण ग्लैडविल देते हैं हवाई जहाज दुर्घटनाओं वाले अध्याय में। चैप्टर का नाम है विमान दुर्घटनाओं का जातीय सिद्धांत।
क्या मतलब? क्या संस्कृति की वजह से प्लेन क्रैश हो सकते? ये तो सुनने में ही अजीब है।
अजीब लगता है, पर ग्लैडविल 1980 और 90 के दशक में कोरियन एयरलाइंस के साथ हुए कई हादसों का विश्लेषण करते हैं। उस दौरान उनका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत खराब था।
हाँ, तो क्या पता चला?
जांच में पता चला कि कई मामलों में कॉकपिट में जो को पायलट या फ्लाइट इंजीनियर था, उसे शायद पता था कि कैप्टन कोई गलती कर रहा है या कोई खतरा है।
फिर उसने बताया क्यों नहीं?
उसने शायद बताने की कोशिश की, पर सीधे तौर पर नहीं, बहुत दबी जबान में, इशारों में।
इसकी जड़ ग्लैडविल कोरियाई संस्कृति में देखते हैं।
कोरियाई संस्कृति में
कैसे?
देखिए, एक डच समाजशास्त्री हैं, गीट हॉफस्टेड। उन्होंने अलग अलग देशों की संस्कृतियों का अध्ययन करके कुछ डायमेंशन बताए हैं। उनमें से एक है पावर डिस्टेंस इंडेक्स, यानी PDI।
पावर डिस्टेंस इंडेक्स,
हाँ, ये बताता है कि किसी समाज में जो लोग कम पावरफुल हैं, वो इस बात को कितना स्वीकार करते हैं कि पावर बराबरी से नहीं बटी है। मतलब वो अपने से ऊंचे पद वालों का कितना लिहाज करते हैं, कितना दबते हैं।
अच्छा, तो कोरिया का PDI कैसा है?
कोरिया का PDI दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। वहाँ जूनियर अपने सीनियर का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। उनके सामने सीधे नहीं कहना या उनकी गलती बताना या उन्हें चुनौती देना बहुत मुश्किल माना जाता है।
तो कॉकपिट में को पायलट अपने कैप्टन को सीधे नहीं बोल पाया?
हाँ, वो मिटिगेटेड स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अपनी बात को बहुत घुमा फिरा कर, नरम करके, इशारों में कहना, जैसे कैप्टन मौसम थोड़ा खराब लग रहा है, बजाय ये कहने के कि हमें तुरंत ऊपर चढ़ना चाहिए।
अब प्लेन के कॉकपिट जैसी जगह पर जहां हर सेकंड कीमती है, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है।
बिल्कुल। तो जब कोरियन एयर ने इस प्रॉब्लम को समझा, उन्होंने अपने पायलट्स की कम्युनिकेशन ट्रेनिंग बदली, उन्हें सीधे और स्पष्ट रूप से बात करना सिखाया, यहां तक कि कॉकपिट में बातचीत के लिए अंग्रेजी भाषा, जिसका PDI कम माना जाता है, को बढ़ावा दिया।
और इसका नतीजा?
नतीजा ये हुआ कि उनका सेफ्टी रिकॉर्ड एकदम सुधर गया, नाटकीय रूप से।
कमाल है, ये दिखाता है कि हमारी सांस्कृतिक विरासत, बात करने का तरीका भी जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है।
हाँ, और ग्लैडविल की वो बात फिर याद आती है, हम कौन हैं, इसे हम कहाँ से हैं, इससे अलग नहीं किया जा सकता। हमारी जड़ें, हमारी संस्कृति हमारे साथ चलती हैं।
ये तो सोचने वाली बात है, भारत जैसे देश में जहाँ इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां हैं, हमारे काम करने की जगहों पर, हमारे आपसी संवाद पर इसका कितना असर पड़ता होगा।
बिल्कुल। और संस्कृति का एक और दिलचस्प पहलू ग्लैडविल जोड़ते हैं, गणित से।
गणित से कैसे? एक चैप्टर है चावल के खेत और गणित की परीक्षा। इसमें वो सवाल पूछते हैं कि एशियाई देशों के छात्र अक्सर गणित में इतने अच्छे क्यों होते हैं।
हाँ, ये स्टीरियोटाइप तो है, तो ग्लैडविल क्या कारण बताते हैं?
वो इसका कनेक्शन जोड़ते हैं एशिया की चावल की खेती की परंपरा से।
चावल की खेती से
ये कैसे जुड़ा है? देखिए, धान की खेती, खासकर जो पानी भरे खेतों में होती है, वो गेहूं या मक्के की खेती से बहुत अलग और ज्यादा मेहनत वाली होती है। इसमें आपको साल भर लगातार बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, कब पानी लगाना है, कब निकालना है, कब रोपाई करनी है, कब कटाई।
मेहनत तो बहुत लगती है।
और इसमें धैर्य चाहिए, लगन चाहिए, और इस काम में एक सीधा संबंध है मेहनत और नतीजे के बीच। जितनी अच्छी तरह आप खेत का ध्यान रखेंगे, उतनी अच्छी फसल होगी। तो इससे एक ऐसी संस्कृति विकसित हुई जहां ये माना जाता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लगन से मुश्किल काम भी किए जा सकते हैं।
अच्छा, तो ये जो मेहनत और लगन वाली सोच है, ये गणित सीखने में मदद करती है?
हाँ, क्योंकि गणित में भी अक्सर आपको एक मुश्किल सवाल पर लंबे समय तक टिके रहना पड़ता है, हार नहीं माननी पड़ती। ये कल्चरल माइंडसेट यहाँ काम आता है।
ये तो बहुत दिलचस्प कनेक्शन है।
और एक छोटी सी चीज और, वो बताते हैं कि चीनी, जापानी, कोरियाई जैसी भाषाओं में गिनती बोलने का तरीका थोड़ा ज्यादा लॉजिकल है अंग्रेजी के मुकाबले। जैसे 11 को वो 10-1 बोलते हैं, 12 को 10-2, 23 को 2-10-3।
अच्छा हाँ, अंग्रेजी में 11-12 थोड़े अलग हैं।
तो ग्लैडवेल कहते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा पारदर्शी सिस्टम शायद बच्चों को नंबर समझने और जोड़ने घटाने में हल्की सी शुरुआत में मदद करता है।
ये छोटे छोटे सांस्कृतिक फायदे मिलकर शायद बड़ा असर डालते हैं।
मतलब मेहनत करने की आदत और शायद भाषा का स्ट्रक्चर भी एक तरह की सांस्कृतिक विरासत हो सकती है जो आपको किसी चीज में बढ़त दे दे।
हाँ बिल्कुल, और ये हमें किताब के आखिरी बड़े आइडिया की तरफ ले जाता है। चैप्टर है मारीटा का सौदा।
मारीटा का सौदा, इसमें क्या है?
ये कहानी है अमेरिका के कुछ खास स्कूलों की, जिन्हें किप प्रोग्राम कहते हैं।
नॉलेज इज पावर
प्रोग्राम। ये स्कूल ज्यादातर कम आय वाले वंचित समुदायों के बच्चों को पढ़ाते हैं।
और खास बात क्या है?
खास बात यह है कि ये स्कूल कमाल के नतीजे लाते हैं। इनके बच्चे पढ़ाई में उन अमीर स्कूलों के बच्चों को टक्कर देते हैं जिनके पास हर तरह की सुविधा होती है।
अरे वाह, तो इनका राज क्या है? कोई जादुई तरीका है पढ़ाने का?
ग्लैडवेल कहते हैं राज बहुत सीधा सादा है, ज्यादा समय।
ज्यादा समय मतलब किप स्कूलों में पढ़ाई का दिन लंबा होता है, सुबह जल्दी शुरू, शाम को देर तक। हफ्ते में भी ज्यादा दिन पढ़ाई होती है और गर्मियों की छुट्टियां बहुत छोटी होती हैं।
अच्छा, तो वो बस ज्यादा पढ़ाते हैं।
हाँ, और इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि वो उस चीज को रोक पाते हैं जिसे एजुकेशन रिसर्च में समर स्लाइड कहते हैं।
समर स्लाइड, ये क्या है?
ये देखा गया है कि गर्मियों की लंबी छुट्टियों में अमीर बच्चे तो अक्सर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, कैंप जाते हैं, म्यूजियम जाते हैं, घर पे पढ़ते हैं, लेकिन गरीब बच्चे जिनके पास ये मौके नहीं होते, वो छुट्टियों में सीखी हुई चीजें भूलने लगते हैं, उनका स्तर नीचे आ जाता है।
अच्छा, तो साल दर साल ये फर्क बढ़ता जाता होगा।
हाँ
हाँ,
किप स्कूल इन बच्चों को ज्यादा समय स्कूल में रखकर उन्हें वो सीखने का माहौल और अवसर देते हैं जो शायद उन्हें घर पर या छुट्टियों में नहीं मिलता। मारीटा उस चैप्टर की एक छात्रा है जो कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने का समय सैक्रिफाइस करती है एक बेहतर भविष्य के लिए। ये उसका सौदा है।
ये दिखाता है कि अगर सही अवसर और सही माहौल दिया जाए तो पृष्ठभूमि की बाधाओं को पार किया जा सकता है।
बिल्कुल, ये सारी कहानियां मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं।
तो अगर हम इस सब बातों को समेटें तो कुछ मुख्य संदेश क्या निकलते हैं इस किताब से?
मेरे ख्याल से पहला तो वही संचयी लाभ या मैथ्यू इफेक्ट वाली बात। कैसे छोटी सी शुरुआत, छोटा सा फायदा वक्त के साथ कितना बड़ा बन सकता है, चाहे वो हॉकी में जनवरी में पैदा होना हो या बचपन में थोड़ी बेहतर पढ़ाई का मौका मिलना।
हाँ, दूसरा और शायद सबसे जरूरी, अवसर और पहुंच का महत्व। टैलेंट होना एक बात है, पर उसे दिखाने, उसे निखारने का अवसर मिलना बिल्कुल दूसरी। बिल गेट्स को कंप्यूटर मिला, बीटल्स को स्टेज मिला, ये मौके सबको नहीं मिलते।
और ये सोचने वाली बात है कि हमारे समाज में कितने ही टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सही दरवाजा नहीं मिलता।
तीसरा, हमारी सांस्कृतिक विरासत का गहरा असर। हम कहाँ से आते हैं ये तय करता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, और ये चीजें अनजाने में हमारी सफलता या असफलता में भूमिका निभाती हैं। जैसे हमने कोरियन एयर या चावल की खेती वाले उदाहरण देखे।
भारत जैसे विविधता वाले देश में तो ये और भी ज्यादा सच लगता है।
और चौथा, कि हमें सफलता की परिभाषा को ही थोड़ा बदलना होगा। ये सिर्फ किसी एक इंसान की मेरिट या आईक्यू का नतीजा नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, सामाजिक हुनर, सही समय, सही जगह, परवरिश, संस्कृति, बहुत सारी चीजें शामिल हैं।
हाँ, वो सेल्फ मेड वाली कहानी अधूरी है। ग्लैडवेल का वो कोट याद आता है, सफलता कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये परिस्थितियों और अवसरों के एक अनुमानित और शक्तिशाली समूह से उत्पन्न होती है। ये एक इकोसिस्टम का प्रोडक्ट है।
बिल्कुल। और एक और कोट जो मुझे बहुत पसंद आया वो अभ्यास के बारे में था। अभ्यास वो चीज नहीं है जो आप अच्छा बनने के बाद करते हैं, ये वो चीज है जो आपको अच्छा बनाती है। ये उस 10,000 घंटे वाली बात का निचोड़ है।
महारत कोशिश से आती है, पर कोशिश का मौका मिलना जरूरी है। और वो विरासत वाली बात भी, हम कौन हैं, इसे हम कहां से हैं, इससे अलग नहीं किया जा सकता। ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है।
तो इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? हम इनसे क्या सीख सकते हैं?
कि जन्मजात प्रतिभा ढूंढने के बजाय उसे अवसर देने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसे मेहनत करना, अभ्यास करना सिखाना चाहिए, और साथ ही वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, सवाल पूछना, अपनी बात रखना, दुनिया को समझना, ये भी सिखाना जरूरी है।
हाँ, और करियर के लिहाज से देखें तो शायद सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है कि हम ऐसे मौके ढूंढें जहां हमें सच में कुछ सीखने को मिले, सार्थक अभ्यास करने को मिले।
और नेटवर्किंग, लोगों को समझना, अपने माहौल को नेविगेट करना, ये स्किल्स भी उतनी ही जरूरी हैं।
बिल्कुल। और ये भी ईमानदारी से सोचना जरूरी है कि हमें अपनी पृष्ठभूमि से क्या फायदे मिले हैं या क्या नुकसान हुए हैं। इस जागरूकता से हम अपनी राह बेहतर बना सकते हैं और शायद दूसरों के लिए भी रास्ते खोलने की सोच सकते हैं।
कंपनियां भी इससे सीख सकती हैं, है ना? भर्ती करते वक्त सिर्फ टॉप कॉलेज की डिग्री ना देखें, बल्कि उम्मीदवार की पूरी कहानी, उसकी पृष्ठभूमि, उसके संघर्ष, उसकी प्रैक्टिकल समझ को भी महत्व दें।
हाँ, और जब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग साथ काम करते हैं तो कम्युनिकेशन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो पावर डिस्टेंस वाली बात याद रखनी चाहिए।
मेरे लिए इस किताब की सबसे चौंकाने वाली बात शायद यही थी कि जन्म का महीना या हमारी संस्कृति में बात करने का तरीका, ये चीजें सफलता पर इतना गहरा असर डाल सकती हैं। ऐसा लगता है हम कितने सारे अनदेखे धागों से बंधे हुए हैं।
सही कहा। मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि सफलता कभी भी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती, ये हमेशा उसके समुदाय, उसके इतिहास, उसे मिले मौकों की मिलीजुली कहानी होती है। अगर हम ये समझ लें तो शायद अपनी कामयाबियों पर थोड़े ज्यादा विनम्र हो जाएं और दूसरों के लिए मौके बनाने के बारे में ज्यादा सोचें।
ये बहुत गहरी बात है। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जाते जाते।
हाँ?
अगली बार जब किसी बहुत सफल व्यक्ति की कहानी सुने या पढ़ें, तो सिर्फ उनकी मेहनत और प्रतिभा पर ही ध्यान न दें। जरा रुक कर सोचें, उन्हें कौन से खास अवसर मिले होंगे, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने क्या भूमिका निभाई होगी, वो किस समय और किस जगह पर थे, इसका क्या महत्व रहा होगा।
शायद इन सवालों से हमें सफलता की एक ज्यादा सच्ची, ज्यादा पूरी और शायद ज्यादा मानवीय तस्वीर मिले।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।